जिसके साथ में बात कर रही थी वो तो यहीं पर खड़ा है। खड़ा है कहां खड़ा है? तुम हमसे दिल्लगी का तो आज ये तलवार तुम्हारे गर्दन पर साफ बैठेगी, बतलाओ जल्दी से। तो मैं झूठ नहीं, मैं सचमुच कहते यही खड़ा है, वो सवालिया यहीं पर है, मोर मुकुट है और बंसी हाथों में खड़ा तो है, तुम उसको तो नहीं देखता? नहीं दिखता, बस हाथ थोड़ा सा रख दिया कर, देखते ही पागल हो गए, उनके चरणों में लुढ़क गए। कहा जी आप नहीं घर में रहूंगी, घर से निकल। बस आज तक का पति और ये का संबंध था, हमारा पति तो यही है, बस छोड़कर क्या उनके चरणों में गिरते 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 नाक रगड़ते ही रह गए और वो घर में नहीं रहे। उन्होंने छोड़े तो गोपियों की बात क्या है? गोपियों की अद्भुत बात है। इसलिए माघ दुर्गर और गैर श्रृंखला में घर की कठिन बेड़ियों को, हथकड़ियों को एकदम तोड़ फोड़ कर और अथा अनंत समुद्र को पैरों से लांग गई, माने क्या है? वेद की मर्यादाओं को, लोक लज्जा इत्यादि को एकदम पार कर गई और कृष्ण ये दूसरों के लिए संभव बनेंगे। हम लोगों के लिए और कित भाई अभी कहेंगे चलो कीर्तन करने के लिए कोई हाथ उठा करके कीर्तन करो तो कोई नहीं करेगा, नहीं एक बार उठा लिया फिर रख देंगे, माला ऐसा पहनेंगे जिससे कि ये कमीज के अंदर मेरे बाद में ना दिखाई पड़े, लोक लज्जा है ना, लोग क्या कहेंगे, अभी लोक लज्जा है। तब इसी में साधारण में कीर्तन करने में बाहर जाने में लोक लज्जा है, बहुत से लोग यहां आते हैं तो छिप करके आते हैं, लोग पूछने ये कहां गए थे, अरे मैं ये सही बाजार गए, ये नहीं कहेंगे गौड़िया मठ में हम लोग प्रवचन में गए थे, लोग अनाप शनाप बातें कहेंगे और कोई कोई ढीठ है वो कह देंगे। इसलिए गोपियां सबको क्षण मात्र में तोड़ करके बंधनों को चली गई। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, यदि ऐसा कहो कृष्ण मायावी है, माया जानते हैं, छल चातुर से गोपियों का केवल मनोरंजन करने के लिए उन्होंने उनका ऋणी बतलाया था, सचमुच में वो ऋणी नहीं है। कृष्ण किसी के ऋणी हो सकते हैं? ये संभव है, किसी का ऋणी नहीं। नहीं जब ठीक है, गोपियों के ऋणी है और किसी के ऋणी हो चाहे ना हो। महाविज्ञ उद्धव जी इस चीज को समझे, पहले नहीं समझते थे ये गोपियों के ऋणी है, जब तक वो मथुरा में थे वो समझते थे विश्व का सभी कोई उनका ऋणी है कृष्ण का, और जब उद्धव वहां पर गए उन्होंने देखा ब्रज का ऐसा कोई नहीं है जिसके कृष्ण ऋणी नहीं है। गोपियों की तो बात निराली बात है, सत्य ऋणी है, ब्रजवासी मात्र के वो ऋणी है। वहां के लोगों ने कृष्ण को जो प्रेम किया, स्नेह किया, वो कृष्ण कभी ऋण चुका सकते हैं? नहीं, भगवान होने पर भी नहीं चुकाए। उनमें से कोई एक मोर कहे जैसे आप कहीं मत जाइए केवल हमारे पास में रहिए, मानेंगे कृष्ण? कहा जो मैं सबको छोड़ दूंगा आपके लिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ब्रज का सखा कोई कहेगा आप सबको छोड़ दिया, मैं सबको छोड़ करके आपके पास, गोपियां कहेंगी ये तुम सब जगत को छोड़ करके हमारे पास में आओ जैसे हम सब जगत को छोड़ करके कृष्ण छोड़ सकते हैं, तो लाखों लाखों करोड़ों भक्तों के अंदर धर्म के वो ऋणी बन जाए। खूब सोलो इनको सोने दे, तकिया ला दो तो आनंद जी के लिए आराम से सो जाए, मन से सुनता नहीं है, सब लोग कितना मन से सुन रहे हैं, रुचि नहीं है। अरे उद्धव जी ने तो ऐसी गोपियों की चरण की धूलि में स्निग्ध होने के लिए, अभिषिक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना की, आसाम हो चरण ऋण जुसाम। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही कहते हैं गोपियों की चरण धूलि के लिए मैं तरसता हूं। अच्छा, ये जो अतुलनीय गोपियों का जो प्रेम उत्कर्ष है, प्रेम का जो उत्कर्ष है, जो कृष्ण भी इसको मानते हैं, किस लिए? किस लिए? ऐसा कोई करी नहीं, नारद नहीं कर सकते, उद्धव नहीं कर सकते, कोई भी जगत में नहीं कर सकता है, यहां तक कि नंद और जसोदा बाबा भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज झूठी हो जाएगी, माया माइक हो जाएगी, कृष्ण झूठी भी है उनके लिए ऋणी बन रहे हैं, छल चातुरी कर रहे हैं। नहीं, दशाक्षर और अष्ट दशाक्षर मंत्र है। कब का मंत्र है? अनादिकाल। ब्रह्मा जी को उन्होंने नारायण के रूप में दिया, या कृष्ण ने स्वयं अपनी सरस्वती जी से शुद्धा सरस्वती के द्वारा उनको ये मंत्र दिया, और पीछे अपने बंसी के द्वारा उनको काम गायत्री दी। ये अष्ट दशाक्षर मंत्र है। पहले एक ही मंत्र शिष्य को दिया जाता था, इसी का नाम दीक्षा था और कुछ नहीं। क्या? गोपी जन वल्लभाय, यही दशाक्षर है, दस अक्षर है इसी को। देखा जैसे ये जीव सब शक्ति रहित हैं, इसलिए इनको और पूरा करने के लिए ये पूरा दिया, बीज समेत दिया। पहले बीज वाला नहीं होता था, अब इसके बाद में बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कहां से होगा? नहीं, गेहूं का बीज ही नहीं रहे तो वो पेड़ पौधे कहां से होंगे? किंतु ये ऐसा ही है, इसलिए साधक जीवों के लिए अष्ट दशाक्षर अर्थात 18 अक्षरों से युक्त ये मंत्र दिया। तो इसमें क्या है? गोपी जन वल्लभ, ये परोहा भाव है, पर किया भाव है। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं, शंकर जी चाहते हैं, सभी लोग इस मंत्र को जपते हैं, तो यह अन्याय है? नहीं, ये ठीक। इसलिए शब्द की अद्भुत शक्ति के संबंध में जिनको ज्ञान है, यह बात उनसे छिपी नहीं है। कैसे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता है। कैसे? उन्होंने देखा, अनुभव किया, महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझको मुख दे करके शासन करके कहा, जैसे देखो वेदांत मत पढ़ो, वेदांत में तुम नहीं समझ सकोगे, इसलिए तुम, हम जो तुमको सहज रूप में मंत्र देते हैं यही मंत्र कहो। इसलिए गुरु जी महाराज ने हमको दशाक्षर मंत्र दे दिया गोपियों का। ये गोपाल कुछ दिन किया और वो देखा कि एक श्याम सुंदर सलोना, श्याम एक बालक, बंसी मुरली उसके अधरों पर थी रख रही, दसवां उंगलियां उसकी चल रही है, नृत्य कर रही है उसके ऊपर, और अपने अधरों का रस मानो हृदय का ही सब कुछ मधुर भाव उसमें प्रकाश करता है, जगत विश्व ब्रह्मांड को, चेतन को अचेतन और अचेतन को सचेतन कर रहा है। मैं देख करके एकदम दौड़ा उनके तरफ में, किंतु वो धीरे धीरे पीछे हटता है, अंत में वो कहीं छिप गया। मैं पागल हो गया, मैं गिर पड़ा। इसी तरह से कभी जब उनको दर्शन होता है तो हंसता हूं, और जब चला जाता है, छिप जाता है, तो मैं रोता हूं। कभी भूमि में लोटता पलोटता हूं, कभी कुछ करता हूं, कभी गाता हूं जोर से, कभी पागल हो गया हूं। ये मंत्र की शक्ति है। जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार फल, आपने कैसा मंत्र दिया, मुझको पागल बना दिया, मैं होश में नहीं रहता इस मंत्र के कारण। गुरु जी ने आंगलिंगन किया और छाती से लगाकर, बेटा तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया और मैं भी, मेरा जीवन भी सार्थक हो गया, ऐसा शिष्य को पाया जो मंत्र को इतनी जल्दी में इसने सिद्धि कर ली। इसका फल तो यही है, कभी हंसाए, कभी रोदाए, कभी रोदन करे, ये गुरु का कार्य है, ऐसा मंत्र दे। और शिष्य का कर्तव्य है इसको अनुभव करे, इस जन्म में ही उसका जीवन सार्थक है। चैतन्य महाप्रभु के परिक्रमा में इसका देखा जाता है, सभी गोसाई लोगों का ऐसा ही, ऐसा ही मंत्र का बल है। इसलिए ये मंत्र सब झूठे हो जाएंगे यदि नहीं पार्थिव भाव को माना जाएगा। तो कृष्ण के विभिन्न ध्यानों में या मंत्रों में उक्त भाव की झलक दृष्टि गोचर होती है, ये इसमें देखा जाता है। कैसे? बरहा पीड़ाभिरामम मृगमत तिलकम कुंडला क्रंत कंडम कंजाक्षम कंबुकंठम शिथसभगमुखम स्वादरे नस्तरेणुम श्यामं शांतम त्रिभंगम रवि करवसनम भूषितम वैजयंता गोप स्त्री परिवेशितो भजयते गोपाल चूड़ामणि। गोप स्त्री परिवेशितो, गोप स्त्रियों के द्वारा परिवेशित है, बस हो गया।
राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय जनम। यम प्रजंतमनुते द्वैतायनो विरहकर्तया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा वैवाश्मि नदीनां प्रयागिनां गोस्वामी के संबंध में कुछ वर्णन कर रहे थे। जी गोस्वामी के विचारों के संबंध में बोलते बोलते कुछ लोग जी गोस्वामी के संबंध में ये बतलाते हैं रूप गोस्वामी का जैसा विचार था जीव गोस्वामी का उससे विचार भिन्न था। उन्होंने भजन में स्वकीय बात को स्थापित किया। रूप गोस्वामी ने भजन मार्ग में सर्वोत्तम स्वकीय बात का स्थापन किया है। सनातन गोस्वामी ने भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया, किंतु इन्होंने इससे कुछ हटकर्ष तो किया बात नहीं। उसके लिए हम लोगों ने पहले विचार किया उनके क्या क्या विचार है। हम लोग अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार कुछ ला करके यह बतलाएंगे कि रूप गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है जी गोस्वामी ने भी वही कहा। भक्ति विनोद ठाकुर जी जज थे और परमार्थिक विषय में उनके निर्णय सबके लिए मान्य है, इसलिए उस पर हम लोग विचार। अभी जी गोस्वामी के विचार हम लोगों ने पढ़ा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार यहां पर हम लोग ले रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पहले ही जी गोस्वामी को प्रणाम कर बताया कि इनका निधि में वो वैष्णव है, प्रधान वैष्णव। उनके लिए रूप गोस्वामी के विपरीत कुछ भी व्याख्या करना उनके लिए संभव पर नहीं है। मैंने दूसरों के लिए ऐसा कहा, जैसे भागवत में परीक्षित महाराज जी ने वहां पर बैठे हुए योगी तपस्वी कर्मी और दूसरे दूसरे ऋषियों के लिए प्रश्न किया कि कृष्ण ने ऐसा जिगुप्सित कर्म क्यों किया, धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले आकर होते हुए भी और ऐसा क्यों किया। तो वो अपने लिए प्रश्न नहीं किया क्योंकि उनको उन्होंने सुब्रत कहा। सुब्रत मैंने क्या है, एक्टो ब्रह्मचर्य जीवन भर रहने वाले और सुब्रत अच्छे व्रत में, अच्छा व्रत मैंने क्या गोपियों का यह जो भाव है उसको ऐसे वो वर्णन कर रहे थे तन्मय होकर, ये उनका व्रत। तो इसलिए सुब्रत भी कह रहे हैं, वो जानते हैं कि इनका कोई भी आधारभूत वस्तु का वो अनुमोदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये सुब्रत है। इसलिए वो कह रहे हैं जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी कभी भी रूप गोस्वामी के दुग्धाचरण नहीं कर सकते। विशेष करके एक देखा जाता है इनके तीन प्रधान शिक्षा शिक्षक हैं, एक हैं शनानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीमान शास्त्री। तीनों के भी
ग्रंथ और उनके पद और उनके विचार देखने से ऐसा प्रतीत होता है स्पष्ट कि इस सब लोगों ने रूप गोस्वामी के विचार के अनुसार में ही जीव गोस्वामी से पढ़ा और उसी का अनुमोदन किया जिसको रूप गोस्वामी करते हैं पार्थिव भाव इत्यादि गोपियों क्यों उनके भाव इसलिए ये कह रहे हैं कि मैंने शायद चार पांच बतलाया था
आप बताया पहले के भाव को नहीं मानने पर मन से जुटा हो जाएगा इनको बताया था
ये बतलाया था श्रीमद भागवत भी झूठा हो जाए विश्वनाथ चक्रवर्ती साधु जी कहते हैं ता बार्जमाना पतिदिन पितृभिंधु भातृभिः इसमें अपने पतियों के द्वारा मना करने पर भी उनकी सेवा करते हुए भी उन्हें छोड़कर के चल पड़ी यहां कृष्ण मंत्री पर आया तो ये गलत हो जाएगा व्यास जी का या सुखदेव गोस्वामी का कहना भ्रातर पतय शवः भाई और पतियों को भी वो छोड़ करके चली गई उनकी सेवा कर रही थी छोड़ करके चल पड़ी एवं जतपत्य पत्य सुहृदान अनुवृत्ति अंगम एवं यत्पत्य अपत्य सुहृदान अनुवृत्ति अंग सबको छोड़ करके कृष्ण के बंसी के नाद को सुन करके जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में छोड़ करके चल पड़े यहां पर पति शब्द का पत्य अपत्य माने बच्चे और दूसरे के कृष्ण की दो प्रकार की कृष्ण की सेवा करने वाले ब्रज में बहुत सी रमणियां गोपियां हैं उनमें स्वकिया और परपिया प्रधान स्वकिया कौन है वो कुमारियां जो कि कात्यायनी व्रत किया उनमें केवल कुमारियां थी उनके साथ में अंतिम दिन में और प्रलोभा गोपियां गई उनको देखने के लिए नित्य सिद्धा भी गई थी वृंदावन में स्वकिया कौन है जो को कात्यायनी व्रत कर रही है कुमारिकाएं कृष्ण से प्रीति है और उनको देख करके उत्पन्न हो जाते ये और परोढ़ा माने विवाह हो गया है बच्चे नहीं है नित्य सिद्धों के सन बढ़ा करके नित्य सिद्धा हो गए वो तो यहां पर जतपत्य पति लड़का तो है नहीं तो यहां अपत्य क्यों लिखा उनके जेठानी के देवरानी के लड़के जिसको अपना ही पुत्र मानकर के उनकी उनको पालन पोषण कर सुखिदान अनुवृत्ति रंग तब गुणानी व गायन तो नात्मा गाराणी संस्मर न आत्मा आगाराणी संस्मर कृष्ण के लीला कथाओं का गान करते हुए कृष्ण जब चले गए अंतरिक्ष अंतर ध्यान हो गए तो ये गोपियां को खोज रही है खोजते खोजते क्या हुआ वो लीला की भावना आई उनके लीलाओं का अनुकरण करने लगी और उनका गान गान करते 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 तब गुण गुणानी एवं गायन तो उनके गुणों को गाती हुई न आत्मा आत्मा को भी भूल गए और आगारानी आगार माने घर घर किसको कहते हैं घर ही घर ये भी तो एक घर है घर किसको कहते हैं गृहिणी रहेगी उसका पति रहेगा तब तो घर होगा गृहिणी रहेगी तो घर कैसे वो तो सबको घर होता है, इसलिए उस घर से साथ पर नहीं है, बल्कि जिसके पति हैं लड़के हैं ये सब भी करके तब से घर, तो अपने पति को भी इसमें भी भूल भूल गए। पति सुतान्वय भ्रातृदान भवान, पति विलंघते अंत अच्युतार, सबको छोड़कर के पति सुतान्वय सबको छोड़कर के चले गए। एवं मदर्थो जित लोक वेद स्वानी अनुवृत्ति वृत्त, इसमें भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे लिए वो कृष्ण कह रहे हैं जब लौट करके आए उनको दर्शन दिया गोपियों ने पूछा प्रति करने वाले को प्रति कोई करता है, जो प्रति करता है उसको वो या नहीं करता उसको भी प्रति करते हैं, जो प्रति करता है नहीं करता उस किसी को प्रति नहीं करते हैं, आप उसमें कौन से हैं, उसी में सबका उत्तर देते हैं। अंत में कहते हैं एवं मदर्थो, मैं इन नौ में से कोई नहीं हूं, तीन तीन को उन्होंने विभाग कर दिया, पहले वाला एक दूसरे वाला दो और तीसरा वाला चार, तो चार आठ दो छह एक सात और दो और लगा नौ, नौ में से मैं कोई एक नहीं बल्कि मदर्थ हो उज्जित लोक वेद स्पानंदमय हो अनुवृत्ते यथाधनो यथाधनो लब्ध धनो यथा लब्ध धनो अलब्ध धनो न चिंतयानी इत्यादि मुझे याद नहीं किया। कहते हैं कि जैसे कोई अलब्ध मैंने गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं और उसको प्रचुर धन मिल गया और देखते देखते हाथों से कोई उड़ा ले गया, अब वो हाय है जैसा करता है वैसे ही मैं तुम्हारे धन स्वरूप हूं संपत्ति स्वरूप दुर्लभ, और मैं जब चला गया तो हमारे लिए तुम लोग हाय हाय कर रहे, उस प्रेम को जो दुर्लभ प्रेम तुम्हारे अंदर में उसको और बढ़ाने के लिए मैं छिप गया मैं दूर नहीं गया था। एवं मदर थो हित लोक वेद, तुम लोगों ने हमारे लिए लोक वेद लज्जाशील धर्म अधर्म सब कुछ प्रत्याग कर दिया, तो मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए तुम्हारे इस प्रेम को जो ये संपत्ति है इसको बढ़ाने के लिए मैं बीच बीच में ऐसा करता हूं। ये पढ़े जैसे अलब्ध धन एक दरिद्र आदमी को कुछ मिल जाए चिंता नहीं हाथों में और लेने के बाद में फिर वह गुम हो जाए कोई ले ले तो उसके लिए एकदम छटपट छटपट जैसे मणि आड़ा सर पर मणि के लिए कान प्रत्याग कर देता है। कैसे वन में जाते हैं लोग मणि के लिए, अब वो प्रथा है कि नहीं, कुछ सर्प होते हैं उनकी मणियां होती हैं तो वो अंधकार में जाते हैं उस मणि को रख करके उसी के प्रकाश में चारों तरफ में अपने आहार को खोजते हैं और उसी को जान देख करके वो होते हैं कुछ ऐसे, वो ऊपर पेड़ पर चढ़ करके कोई ढक्कन लेकर के लोहे का उसके ऊपर में गिरा देते हैं ऊपर से और वो एकदम पावन हो जाता है और वहीं पर पांच छटपट छटपट करते हुए उनको छोड़ देता है, उसके बिना जी नहीं चल। तो ऐसे तुम लोगों का भी प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया, कृपाभवंतम आत्मान जागृति गोपी जोषिता, जोषित किसको कहते हैं, विवाहित पत्नी को जोषित कहते हैं, इसलिए जागृति गोप जोषिता गोपों की जो जोषिताएं हैं पत्नियां हैं कृष्ण ने अपने को उतना ही बनाया तो यहां पर भी बतलाया गया है। मन्यमान स्वपाप स्वस्थान स्वाम दारान बजौकसः, मन्यमान यहां कहते हैं जब गोपियां एक ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में कितने लाखों वर्षों के बाद में रात हो गई थी और वो रात के बाद में जब वो घर में लौटी कृष्ण के कहने पर तो उसने पतियों ने अपने स्त्रियों पर क्रोध नहीं किया, क्यों नहीं किया उसी के लिए कहना है। मन्यमान उनके पतियों ने स्वान दान उन गोपियों के जो पति हैं अपनी पत्नियों को अपने पास ही में देखा। कैसे देखा? योग माया के प्रभाव से देखा। योग माया ने उतने ही गोप कुमारी गोपियों को वहां पर प्रकट कर दिया अपनी योग माया के प्रभाव। और उनकी पत्नियों ने देखा कि हमारी साथी में घर में रह रही है, खा रही है, पी रही है, खिला रही है, घर की सेवा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि हमारी इत्या कहां गई, इसलिए बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं आया इत्यादि। यह सब उदाहरण देकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुखदेव गोस्वामी स्वयं श्री कृष्ण और गोपियों के मुख निष्ठित, इनमें कुछ वचन गोपियों के हैं और कुछ सुखदेव गोस्वामी के हैं, इन वाक्यों से परोहत्व और उपपत्तित्व भाव स्पष्ट रूप से रासलीला माया द्वारा रचित मिथ्या नहीं है। जी गोस्वामी ने कहा था क्या, ये जो माया प्रत्ययित भाव ये सब गोपियों का दूसरा कोई पति नहीं हो सकता, ये गोपियों के स्वयं ये अपनी शक्ति के स्वरूप शक्ति के ये प्रकाश है, इनमें ये सब की संभावना नहीं है, नित्य कृष्ण की ही है, उनका दूसरा कोई पति हो सकता है ये कभी संभव पद नहीं है, उसके लिए वो मिथ्या की स्वभाव है। किस लिए कहा? साधक की अत्यंत निम्न कोटि में है जिनके लिए ये प्रश्न होता है, हम लोगों को ये प्रश्न नहीं होता, कभी आज तक प्रश्न नहीं उठा जी गोपियां उनकी स्वकिया की पर दिया तो ये जाता ही नहीं है, तो उन लोगों को क्या आएगा। तो इसलिए जो कि अत्यंत निम्न स्तर में है भजन राज्य के, कुछ भजन नहीं जानते हैं, जो भी तपस्वी और हैं, शुद्ध गुरु से पदाश्रय नहीं किया, कुछ हरि कथा नहीं सुनी जिनको, उनको ये सब प्रश्न होते हैं, उनके लिए जी गोस्वामी ने ये कहा। वो जानते नहीं है जैसे योग माया महामाया क्या होती है, उसकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो जानते नहीं, उनके दिमाग में नहीं आएगा ये योग माया और महामाया किसको कहते हैं, सामंजस्य नहीं कर सकेंगे, कहेंगे जैसे भागवत ये झूठा लिखा गया। क्यों? इसलिए झूठा लिखा गया, अरे वही जब वसुदेव जी जबकि वहां पर गए तो योग माया को देखा स्वयं ने, उनको उठा लिया गोदी, और फिर वही भागवत कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कंस के हाथों से वो उड़ करके अष्टभुजा दुर्गा हो गई, ये महामाया हो गई, ये कभी संभव है? एक ही थी दो, वो सामंजस्य नहीं कर पाए। आया समझ में? मूर्ख समझ में क्यों नहीं आया? वो कहते हैं ये गधा है ये घोड़ा है, एक ही चीज को, ये होगा कि नहीं? एक ही चीज गधा घोड़ा दोनों होगा है? ये बहुत बुद्धिमान और बहुत मूर्ख है ये चीज, ये होगा? अभी ताजे बड़ा भारी मूर्ख है, और अभी थोड़ी देर के बाद में कभी नंबरी गधा है, अब फिर कह दिया जो बड़ा बुद्धिमान है, तो वचन में असंगति रही, इसका मतलब है वो गलत। अभी भागवत में वो पहले बताया जिसे योग माया उत्पन्न हुई कहां? गोकुल। वो भगवान की अपनी पराशक्ति है, और यह कंस के हाथों से निकल करके वो दुर्गा अष्टभुजा हो गई, वो महामाया हो गई, ये कैसे संभव है? तो उनके दिमाग में ये सब चीजें कैसे हो गया? वो आंख से देखेंगे बात उनको सत्य माने, उन लोगों के लिए ये नहीं है। ये तो बहुत उन्नत कोटि के साधकों में भी उत्तम भागवत हो या अब मध्यम भागवत में आकर के अब उत्तम भागवत होने जा रहा है, उन लोगों के लिए ये सब चीजें भागवत है, भागवत है ये साधारण लोगों के लिए नहीं। इसलिए हमारे आचार्य ने भागवत को विशेष करके दशम स्कंद को वर्णन करने के लिए मना किया कि इनको ये समझ में आएगा, किंतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। यदि भक्ति करनी है तो दशम स्कंद जरूर पढ़ना पड़ेगा, किंतु पढ़ेगा कौन? जो सदगुरु पदाश्रय करके संबंध ज्ञान हो गया, अनर्थ अर्थ को अब समझने लगा, ऐसे व्यक्ति ये समझ साधारण आदमी पढ़ेंगे उसका सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, उल्टा अर्थ लगाएंगे, गलत अर्थ कर देंगे, कोई मरेगा कोई तरेगा, इसलिए भागवत पढ़ करके बहुत से लोग मरते हैं और बहुत से लोग पढ़ भी जाते हैं। रासलीला माया द्वारा रचित मिथ्या नहीं है, यदि है तो लक्ष्मियों की उपेक्षा अपेक्षा गोपियों का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा? रासलीला को निकाल दो भागवत से, तो द्वारका की महिषियों से और इनकी गोपियों की श्रेष्ठता कैसे होगी? उन लोगों से वो लक्ष्मी है, कैसे होगा श्रेष्ठ? इसीलिए उन्होंने कहा कि गोपियों को जो कृष्ण से सौभाग्य प्राप्त हुआ वो द्वारकावासियों को और लक्ष्मियों को प्राप्त नहीं हुआ। नायम स्वयं को नितांतर थे प्रसाद इत्यादि। भागवत में इसी के आधार पर गोपियों को लक्ष्मी से श्रेष्ठ बतलाया। नायन सियो वंग नितान करते प्रसाद स्वजोषिता नलिन दंड रुचो कथा अन्यन रासस तवे मुझे दंड गृही तकंतर लब्धा शीशां गदु दुगात ब्रज सुंदरीना। ब्रज सुंदरियों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो लक्ष्मियों को नहीं हुआ, द्वारकावासी द्वारका की महिषियों को जो नहीं हुआ, रामचंद्र जी की सीता को जो नहीं प्राप्त हुआ, नारायण की लक्ष्मी को जो प्राप्त नहीं है वो उनको प्राप्त हुआ। क्या मुझे दंड गृहित कर मारा कहना है? क्यों अपने ही मारा बन गए और उनके गले में उनसे प्रणय की भिक्षा मांगे? लक्ष्मी और द्वारकावासियों से नहीं, उनको तो डांट दिया तो बस गड़बड़ हो गया उनका दिमाग। रुक्मिणी को कहा गया तुम दूसरे से शादी कर लो और जिससे शादी करना चाहती है बतलाओ, मैं उसको बुला करके उसको अर्पण कर दू। बस वो थर्रा गई और गिर गई केले की, जब पेड़ कट जाता है गिर जाता है ना ऐसे वो गिर गई और श्वास नहीं रहा, हाथ हाथ करता था और वो भी हम सोचता थी कि हमारे कुंजेश निकल जाओ, किंतु मैं तो सोचता था जिसे थोड़ा सा परिहास हो जाएगा, तो तुम परिहास करने लायक भी नहीं। फिर अंत में उनको ठीक किया, तो इसलिए इन लोगों को जो सौभाग्य नहीं है गोपियों को अधिक सौभाग्य, ये कैसे प्रमाणित होगा? रासलीला के द्वारा ही होगा, उत्पत्ति भाव के द्वारा ही होगा, जिसमें कोई भी संबंध कारण नहीं है जिस कार्य में, अहेतुक है, इनमें विवाह होने पर ही इनका प्रेम होगा और उनका प्रेम नित्य सिद्ध विवाह हो न हो नित्य ही से उनका प्रेम, उसका आदि नहीं है अंत नहीं। इनका विवाह से आदि हो सकता है और उनका विवाह ही नहीं है तो आदि कब अनादि इनका है, इसने अनादि काल से ही वो कृष्ण की किया है, उसका हेतु नहीं है, नहीं तो हेतु दूर होने पर वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। हेतु जिस काम पर रहेगा, किसी का सौंदर्य देख करके हमने शादी की, सौंदर्य यदि नहीं रहा तो क्या करेंगे? को ले आएंगे सौंदर्य वाली, किसी कोई हेतु होने से उसका हो जाएगा। इसलिए जिस प्रेम का हेतु होता है विवाह उसमें प्रेम उतना नहीं होता, ये सब कोई हेतु नहीं है। गोपियों का प्रेम ऐसा है, किसी चीज का हेतु नहीं है, स्वाभाविक निर्मल है उनका प्रेम। यदि रासलीला माइक हो गई तो फिर श्रीमद भागवत भी मिथ्या हो गया और गोपियों का उत्कर्ष भी समाप्त हो जाएगा। फिर रुक्मिणी और सत्यभामा और ये बल्कि वो श्रेष्ठ हो जाएंगे, कौन महिषा श्रेष्ठ हो जाएंगे, सीता जी श्रेष्ठ हो जाएंगे, कहीं भी किसी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती छात्र थे, कहीं भी किसी ने दाम्पत्यमयी रासलीला का वर्णन नहीं किया। जैसे रामचंद्र जी को लोग रसिक कहते हैं, आज लोग कुछ कृष्ण की लीला से बहुत प्रभावित हुए और उनको भी रसिक शेखर कहना आरंभ कर दिया। रसिक शेखर कहेंगे तो बहुत बल्लभा और नहीं होगी, ये नहीं स्वीकार करते रसिक कैसे हुए। दूसरी बात, रासलीला कृष्ण में है, रामचंद्र जी की रासलीला कैसे करेंगे, कैसे होगी? वो मिथिलावासी कुमारियों को लेकर के कहते हैं, किंतु उनको तो गोपी जन्म हुआ कभी घर में हुआ इसलिए नहीं समझते। कौर्य कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, 16,108 रानियों के साथ में समुद्र के किनारे राज कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? दांपत्य नहीं, नहीं ये संभव नहीं है। क्यों क्यों
मर्यादा है,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा, इसमें राष्ट्र में मर्यादा हट जाती है, वो अपने स्त्रियों के साथ में नाचगान करें तो क्या है? क्या सारे नहीं तुम समझते? गोपियां अपने चरण में अलता लगा करके कृष्ण के सिर पर रख देगी, छाप लगा देगी। कोई अपनी पत्नी ऐसा कर सकेगी? मर्यादा काम नहीं। कह दिया हमारा कैद अब ये थक गए, तो पति आकर के रामचंद्र जी सीता जी जा रही हैं उनके पैरों में मान लिया, कांटा गड़ गया, क्या होगा? लक्ष्मण निकालेंगे कि नहीं है? नहीं निकालेंगे। क्यों? सीता जी कभी भी दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकेगी, इसे लक्ष्मण ने, यदि स्त्री होगी तो कोई कर देती, लक्ष्मण जी तो देवर हैं, इसलिए उनके देखेंगे हाथ पास करेंगे, हाय हाय हो गया, किंतु कुछ कर नहीं सकेंगे, सीता जी का पैर नहीं छू सकते। रामचंद्र जी आएंगे, दबते हुए आएंगे, मर्यादा तो देखते हुए आएंगे, देखेंगे ये कोई है कि नहीं, तो अभी नहीं निकाल सकते। क्यों? सीता जी का नहीं आए समझती, दुख से मरेंगे, अपने आप जैसे तैसे निकाले, या जल्दी से छत खींच दिया बिना पैर छुए हुए, ये हो सकता। सच में मर्यादा का ख्याल रखें, इसलिए वो भी निराश नहीं कर सकते। यहां पर आपके बाद पठरानिया सत्यभामा इत्यादि जब थक जाएंगी तो उनकी सेवा करेंगे, झिड़क सकेंगे? ये रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण को क्या कहेंगी? उनसे प्रश्न करेंगी? ये सब नहीं होगा, मर्यादा वहां पर टूट जाएगा, इसलिए उनके लिए ये सब संभव पर नहीं है। इसलिए कभी किसी ने उन लोगों का कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण ने भी वो सभी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अतिरिक्त और किसी का रास्ता बंद नहीं किया। और इस दाम्पत्य लीला, इस लीला को यदि कोई माइकी कहे तो भागवत भरा रहा, ज्यादा भागवत का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। निगम कल्प करो गलिता में फलम सुख मुखा आगम, ये कल्प यदि कोई उपपति वाले जितने भी भाव है उसका उल्टा अर्थ करे और उन अंशों को भ्रम पूर्वक जान करके प्रत्याग कर देंगे तो राज लीला की कोई उपयोगिता ही नहीं रही। वो राज लीला से पहले वो वेणु भी कोई महत्व नहीं है। उद्धव जी का ब्रज में जाना भ्रमजी के कोई महत्व नहीं रह जाए। सब जो भागवत के जो विशेष अंश हैं जिसे इसको रस ग्रंथ कहते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। नकारे हम निर्बद्ध संचारी श्लोक का अर्थ क्या करेंगे? तुम्हारा मिलन का बहुत परम पवित्र है, सर्वथा निर्दोष प्रेम है, बिना कोई दाग का निर्मल प्रेम है, तुम्हारे इस साधु कृत्य का कभी भी ऋण चुकाने में असमर्थ हो, स्वयं पर ब्रह्म कह रहे हैं, अपने मूड में कह रहे हैं। उस समय में कृष्ण की बुद्धि चंचल नहीं है, स्थिर होकर के यह निर्णय दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। राष्ट्रीय माइक होने पर इस पद्यांश के परम प्रेम उत्कर्ष की प्रमाणिकता अमूलक और वास्तविक हो जाएगी। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा मैं देता हूं जैसी आई पाकर के भी मैं तुम्हारा ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। ये जो श्लोक है मां भजन दूर जर गृह श्रृंखला, उसी श्लोक का नीचे रहा दूर जर गृह श्रृंखला संबृष्ट तद पतिजात साधना, यह प्रज्ञांश भी परोहा उपपति भाव का प्रतिपादक है। दूर गृह श्रृंखला गृह की श्रृंखलाओं को हथकड़ी और देवियों को काट करके, गृह की श्रृंखला क्या होती है, अभी एक आदमी आए हमारे पास, दंपति आए, पति और पत्नी दोनों हमारे पास में प्रार्थना करने ले गए, हमारी स्त्री हमारी बात नहीं मानती और पत्नी कह रही कि ये हमारे बात नहीं मानते हैं महाराज जी, आप विचार करते हैं। पत्नी कह रही हम किसी स्थिति में मथुरा छोड़ना नहीं चाहते और पति कह रहे हैं जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं उनकी व्यवस्था के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, वहां जाकर के उनकी व्यवस्था करनी है, कुछ दिन व्यवस्था हो जाने पर अपने पैरों पर टिक जाएंगे, उनकी शादी ला करके फिर हम आए। तो पहले मैंने स्त्री का पक्ष लिया, मैंने कहा हम हर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके जलांजलि दे करके आपके जैसे बिजनेस को भी रुपये के लिए ही तो बिजनेस होता है, तो ये छोड़ करके हम लोग यहाँ मथुरा में बास करते हैं और आपके घर से एक दो रोटी लेकर के जीविका निर्वाह करके मथुरा नहीं अपना नहीं छोड़, ये नहीं हो सकता। भले ही हमारा कुछ भी ना हो किंतु मथुरा वृंदावन को किसी स्थिति में चाहे भले ही वो वैकुंठ में जाए नहीं छोड़ेंगे, ये जगत की तो बात और धन संपत्ति तो क्या बात है, इसलिए आपकी स्त्री की बातें बहुत ही दुखी हो। आप मरने के लिए बूढ़े होकर के आए, बूढ़े की स्थिति आई, आप 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष, आपकी पत्नी भी 62-63 वर्ष की, सारा जीवन यहां पर कटा और अंत में जाएंगे भविष्य में मरने के लिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को तो देखते, तो आप मर गए होते तो फिर बच्चे का क्या होता, क्या होता, बतला आप उनके पालन पोषण करने वाले, नौकरी देने वाले, व्यवस्था करने वाले आप हैं, तो वो कुछ उनके बोझ नहीं आया। कहीं बहुत से लड़के हैं जिनके पिता माता मर गए हैं, वो क्या कैसा हो रहा, उनका चल नहीं रहा, और भी कुछ युक्तियां उन्होंने, मैंने उनका खंडन किया, इसकी बड़ी प्रसन्न भाई। मैंने कहा कि इनको देखो सारा जीवन जिनके साथ में रहा और थोड़े दिन के लिए उनका तुम समझ पाओ कि यहां पर रहेंगे और वहां रहेंगे, इसलिए हमको उचित नहीं जान पड़ता है, या तो उनको मना लो आने तो उनके साथ में तुम भी दिल्ली जाओ और वहां से बीच बीच में आना, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे रहने का। अब तो पति उससे बड़े प्रसन्न हो गए, उसका मुख थोड़ा सा सचमुच में पूछा जाए तो क्या करना उचित है। अब मर्यादा के तरफ में जब ध्यान देते हैं तब देखते हैं कि ये स्त्री और पति का रहना ये संसारिक मर्यादा है और इस मर्यादा को यदि कोई भंग करता है तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, जब भक्ति के परमार्थ से विचार करते हैं ऐसे मर्यादाओं में रखा ही क्या है, आज न कल तो वो दोनों में से कोई एक पर जाएंगे ही, अपना परमार्थ छोड़ करके नित्य काल के लिए इसको चौपट करके दूसरे जगह जाएंगे, यदि कहो जिसे जहां भी रहेंगे वहां पर संग करेंगे भजन करेंगे वहां ऐसा करने से हो जाएगा, तो तब फिर ब्रज की महिमा क्या है, महिमा क्या है, हम तो भजन नहीं करेंगे तभी इसको नहीं चाहिए। कोई कह रहे थे सर आपको दूसरी जगह हम लोग कहते हैं मान जैसे आपको प्रणाम है मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगा, हम दूसरी जगह हम रह करके हम जमुना के किनारे रह लेंगे किंतु हम नहीं छोड़ेंगे, किंतु मर्यादा की जहां बात आती है तब तक फिर वहां पर मर्यादा की दृष्टि आने से ही बस सब कुछ ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, ये दुर्जर गृह श्रृंखला वो मेरी बात मान गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, अंत में पति भी प्रसन्न हो गए। अच्छा बीच बीच में उनको हम लाएंगे और ले जाएंगे, ये पशुला न मार हुआ, यह दुर्जर गृह श्रृंखला, छोटे छोटे बल भी बिल्कुल आते हुए बच्चे हैं, इतने नन्हे नन्हे मुंडे हैं, देखने के वाला कोई नहीं है, क्या पति ऐसे समय में बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके भजन करने आ जाएगा। भागवत में ऐसा लिया प्रभात महाराज के चरित्र में उपदेश में, अभी विवाह करके नई नवेली आई है घर में, अभी अभी आई और कुछ बराज हो गया तो वो क्या पति उसको छोड़ करके चला जाएगा, माता पिता मरने के लिए बूढ़े बैठे, हमको कोई देने वाला, कोई सेवा करने वाला है? कौन ऐसा निश्चित व्यक्ति होगा जो उनको छोड़कर के भगवान का भजन करने आएगा? वो तो सुखदेव गोस्वामी जैसे यदि कोई हो, निष्ठुर परम निर्दय सांसारिक विशेषकार है, किंतु वह निष्ठुर नहीं, वो सबसे अधिक प्रेमी, सबसे कोमल हृदय का है, जो कृष्ण जन्म जन्मांतर के माता पिता भाई बहन उनको छोड़कर के ये संसार, ये निष्ठुरता है। ये कह रहे हैं ये मां भजन दूर जर गृह श्रृंखला, गृह की श्रृंखलाएं ऐसी हैं सोने की मोटी मोटी हथकड़ी और देरी से भी अधिक हैं, जिनको कोई भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी इंद्रिय दास व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति नहीं है, असमर्थ व्यक्ति उनको नहीं छोड़ सकता है, भारी कठिन है। मैं कहता हूं ये ब्रह्मा जी ने जन्म से ही उसके अंदर में ऐसा जन्म देकर तो उसके साथ साथ में ये माया दे दी है, मोह दे दिया है, इसलिए आदमी समझ बूझ करके भी कोई चीज, बुरा आदमी तो ये सोचता है कि मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, और मुझे कौन देखेगा, जो पेट में देखा वो अब नहीं देखेगा, मैं क्या करूं, भजन करो कैसे, ऐसे हमारे पूर्वजों ने किया है, किंतु फिर भी वो मोह गृह श्रृंखला संवृष्य का मैं काटी का संगी मनोव्यासंग व्यासंग माने क्या, संग विशेष रूप से संग आसक्त दुर्जन गृह श्रृंखला को अपनी पहली तलवार के धार से दूसरा नहीं काट, कृष्ण गोपियों ने कृष्ण के लिए भर गृहस्थी उपस्थित अक्षेद्य श्रृंखलाओं को काट कर एकनिष्ठ भाव से उनका भजन किया था। कृष्ण उनके इस प्रेम सेवा और त्याग कार्य चुकाने में अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं। ये यदि माइक हो गया तो रहा क्या, भागवत के इस सर्वोत्तम श्लोक का तात्पर्य ही तो गड़बड़ हो गया, यदि ये माइक हो गया, झूठा हो गया तो, और जो भागवत पढ़ करके महाप्रभु की धारा में आकर के और उसके प्रति जिसको लोभ नहीं हुआ, तो ऐसा दुर्भागा विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड है ना, उनमें सबसे दुर्भागा कौन होगा जो गोस्वामियों के परंपरा धारा में आकर के महाप्रभु से संपर्क स्थापित करके इन भावों में जिनको लोभ नहीं हुआ, उनके जैसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पशु और दुर्भागा नहीं। भक्त विनोद ठाकुर कहते थोड़ा सा भी यदि महाप्रभु के संपर्क में आ सके, उनके विचारों को लेकर के चलेगा, जरूर प्रेम होगा और उसको लोभ जरूर उत्पन्न होगा, और कोई दूसरी पद्धति नहीं है। कृष्ण ने लीलाएं की किस लिए की, जिनका निर्मल हृदय है इन लीलाओं को सुनकर के आकृष्ट होगा और वैसे ही भजन करने का लोभ उसमें उत्पन्न होगा, इसलिए इन लीलाओं को अनुग्रह करके किया जो कभी नहीं जिस लीला से प्रकट, ये ग्लोक वृंदावन की ये लीलाएं वहां से इसको प्रकट किया, किस लिए, क्यों, परम करुण कृष्ण रसिक शेखर,
रसिक शेखर कृष्ण परम करुण,
इसलिए उन्होंने किया। यदि ऐसा कहो ये कृष्ण तो छली है, मायावी है, मैंने छल चतुराई से गोपियों को केवल मनोरंजन करने के लिए अपने को नहीं बतलाते, साक्षात वो किसी के ऋणी नहीं है, कृष्ण भला परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म होकर के वो ऋणी किसी के हैं, वो तो एक ऐसा ही स्थल कर दी, जैसे शिष्य कोई भिक्षा गया और थोड़े से कुछ पैसे लेकर के आया भिक्षा से और गुरु जी को दिया, गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं, हां पैसा लिया है। जैसे कि हम लोग जब हम लोग मठ में पहले आया आज से 1946 कितना वर्ष होता है
50 से 48
उस समय में पैसे का कितना मूल्य था, उस समय में बहुत मूल्य था, 10-20 रुपए में मठ चल जाता था, एक रुपए में बाजार हो जाता था हम लोगों के सामने, तो उसमें मैं घर छोड़कर के आया और भिक्षा करने के लिए निकल गया उस पार में नई हाटी और उधर उधर में चला जाता था अकेले। दिन भर घूम करके सवेरे से शाम तक 8 रुपया हो गया और गुरु जी को दिया। इतनी प्रसन्न भय जो क्या कहा, आज उनको मानो जी सब कुछ उनको मिल गया। इतना प्रसन्न होकर उन्होंने, अच्छा तो वो प्रसन्नता से यदि किसी को भजन मार्ग में और उन्नत होकर के ये सब विचारों को हम लोगों को सुनते और तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। वो पैसा कुछ बड़ा नहीं था, वो हम लोगों को उत्साहित करने के लिए ऐसा था। जिससे वो बातचीत करते थे, जिस शिष्य उसको ऐसे प्रेम से बोलते थे मानो तुमको सबसे अधिक प्रेम करता हूं, प्यार करता है। तो ये कृष्ण ने छल करके उन गोपियों से ऐसा कहा, न पा रहे हम निर्वत संजू जान, मैं तुम्हारा ऋणी। कोई कोई यदि कहे मनोरंजन के लिए ऋणी बतलाया, वास्तविक में ऋणी नहीं बतलाया, या बात युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ती। माने क्या, युक्ति से जब विचार करेंगे तब ये ठीक नहीं उतरती, युक्ति से उतरती नहीं, अतः यह बातचीत नहीं। सचमुच में वो ऋणी थे, क्योंकि परम एकांत भक्त चूड़ामणि महाविद्य उद्धव जी इस मिथ्या और अनित्य विषय में भजन की पराकाष्ठा क्यों दिखाई। उद्धव जी जैसे व्यक्ति देश का अनुमोदन किया, क्या अनुमोदन किया, आसाम हो चर
वंदे नंद,
उन्होंने ये कहा कृष्ण की वंदना नहीं की, कृष्ण को भूल गए, जिस कृष्ण को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे। आज उद्धव जी ब्रज में आकर के देखा कि कृष्ण तो यहीं पर संपूर्ण रूप से है, असंपूर्ण रूप से द्वारका में, पूर्ण रूप से यहां पर है। इसलिए कृष्ण ने जो बात कही थी वो ठीक है, इसीलिए गोपियों के लिए कहा आकाम हो चरण रे शाम। जिसका श्रुतियां जिन कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आज तक नहीं पा सकी, और गोपियों ने, गोपियों के वो कैसे हैं, अत्यंत अधीन है। इसलिए उन गोपियों की चरण वंदना करता हूं। मैं ब्रज में जन्म लेना चाहता हूं घास से, पेड़ पौधे के रूप में नहीं। क्यों, कृष्ण की चरण धूरी हमारे सिर पर लग जाएगी, नहीं कृष्ण को हम जा रहे हैं वहां पर ले लेंगे, कृष्ण की चरण की धूरी हमको जरूरत नहीं। क्यों, क्यों नहीं जरूरत है, इसलिए कि गोपियां के सबसे अधिक वो वशीभूत हैं, गोपियों के, गोपियों की चिताने से कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाएंगे, कृष्ण की चरण धूली से वो प्रसन्न होंगे वशीभूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने वृंदावन में वैसे गोपियों की चरण धूली से अभिषिक्त होने के लिए गुलमलताओं में जोली में जन्म लेने की उन्होंने प्रार्थना की है, आसाम हो चरण इत्यादि। क्या इसके द्वारा पटरानियों को अपेक्षा गोपियों का प्रेमोत्कर्ष सूचित नहीं होता, कभी उन्होंने महर्षियों के लिए कहा, महर्षियों के लिए नहीं कहा। यदि किसी समय उनको मान होगा गोपियों की प्रतिष्ठा दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे हैं, और सत्यभामा जी भी वहां से पृथ्वी को धमकाती हुई पैरों से चली गई, अरे ये सत्राजित जैसा बदमाश, उसकी लड़की भी वैसी ही, जाओ बुलाओ अभी, अभी नहीं आती है तो उसको अभी माल से बाहर कर दूंगा। पशुओं की बात की दौड़ करते गई, अरे पधारिए जल्दी से, आज कृष्ण बड़े रुष्ट हैं, तुमको मन से निकाल देंगे। बस थक थर पाते ही फिर से कपड़े पहन करके और सुन गए खंभे के आदमी चुपचाप। और कृष्ण कह रहे हैं मैं जानता ये ऐसी बात है, और गोपियों की प्रसन्नता प्रशंसा करने से ही इसको जलन होती है, तो मैं इसको अभी निकाल दे, मैं तो गोपियों की प्रसन्नता के लिए उद्दीपना के लिए निश्चय शादी की, नहीं चिंता हमको कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम पूछा दिया। और रुक्मिणी के कारण कर लिया, जाओ दूसरे से शादी कर लो, और नहीं तो मैं शादी कर लू, जिससे कहो उसको बुलाते थे तुम्हारी फिर से शादी कर, तो वो शादी नहीं करेंगे, यदि क्यों नहीं करेंगे, हमको नीचा दिखाने के लिए तुमको नहीं करेंगे। एक तरह से तो तुमसे श्रेष्ठता गोपियों की कैसे होती, उसमें कभी दवा हम काट लिए हैं ऐसी कभी हुई है? धमकाने का कोई सबकी मर्यादा से तो बंधे नहीं है, उनकी तो कोई खरीदी भी नहीं है, तो असल कदार शिकार विवाद लेकर के उनको नहीं दिया गया। इसलिए उनको इस अतुलनीय प्रेमोत्कर्ष का कारण यह है, स्वाभाविक है, स्वच्छंद उनका मिलन है, कोई हेतु नहीं है। इसलिए आर्यपद का आर्यपद को छोड़कर के स्वजनों को छोड़कर के कृष्ण में एकांतिक अनुराग से ही मिलती, स्वाभाविक अनुराग से उनका परस्पर मिलन है। यदि उनका स्वजन और आर्यपद अतः पतिपता धर्म त्याग और माई व्यापार माना जाए तो फिर रहा क्या भागवत में? इसलिए यदि ऐसा माना जाए तो उद्धव के वचन भी धर्म पूर्ण हो जाए, धर्म हो जाए। दशाक्षर और अष्ट दशाक्षर मंत्र का तात्पर्य भी परमहत्व और उपपत्तित्व भाव में है। गोपी जन बल लगा कितना बज गया? सवा छह बज गया। अभी प्रकाश है, देखते हैं
प्रकाश है।
शब्द की अद्भुत शक्ति के संबंध में जिनको ज्ञान है उनसे ये बात नहीं छिपी है, और जिनको शब्द का कोई ज्ञान ही नहीं है, मंत्र से कोई संबंध नहीं है, गुरु जी से कान फूकवा लिया, गुरु जी भी वैसे जो कान फूकने वाले हों, उन लोगों को यह रहस्य मालूम नहीं होता। अथवा जो कपटी भूत हैं, संसारिक पदार्थों की अधिक महिमा देते हैं, समझते हैं, और परमात्मा की महिमा नहीं देते, उन लोगों के लिए यह समझना गुरु जी उनका यथार्थ में कान फूक देते हैं, तात्पर्य नहीं देंगे। इसलिए खूब निष्कपट होकर के गुरु बचनों के विश्वास करके और किसी के लिए मत चेष्टा करो, केवल भक्ति के लिए चेष्टा करो। ये किसी और चीज के द्वारा नहीं मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा? या तो कृष्ण प्रसन्न होकर कहे कि कृपा से दे दें, या कोई ऐसे संत हो जो दे, तब तो मिलेगा। इसलिए शब्द की अद्भुत शक्ति अर्थात मुक्त प्रग्र वृत्ति, मुक्त प्रग्र वृत्ति किसको कहते हैं? जो अंत तक सबसे श्रेष्ठ प्रेम तक पहुंच जाए उसको कहते हैं
मुक्त प्रग्र।
कोई भी शब्द, कोई भी शब्द है, ये सब अंत में मुक्त प्रग्र वृत्ति से कृष्ण को ही लक्ष्य करते हैं। सूत्र, वृत्ति, टीका, शब्द, कारण, जितने समास, जिसने व्याकरण की चीजें हैं, जगत में जितने नाम हैं, सब अपने अंतिम में लक्ष्य किसको करते हैं?
कृष्ण को लक्ष्य करते
हैं। तो किसको ज्ञान होगा? चोरी, चोरी खूब खराब चीज है ना, अब इसको बढ़ाओ। कृष्ण ने दिल की चोरी कर ली, अब ये चोरी कैसी रही? बुरी हुई कि अच्छी हुई? सबसे गंदा कोई भी शब्द ले लो और उसका प्रयोग कर लो, देखो जिसे कहां तक हो पहुंच गया। कोई भी नाम ले लो, शिव, शिव माने क्या? कल्याण। कल्याण माने क्या? रुपए पैसे का कल्याण, न स्वर्ग का सुख कल्याण, न वैकुंठ का सुख कल्याण, न दर्गाधीश का प्रेम, न उसे ऊपर उठ जाओ ब्रज का प्रेम, ब्रज के प्रेम में भी दास सख्य बात्सल्य का प्रेम, उसे भी ऊपर उठ जाओ। कौन सा कल्याण? गोपियों का अनुगत्य। गोपियों के अनुगत्य में कौन सी गोपियों का अनुगत्य? वहां तक पहुंच। कोई भी शब्द ले लो, विष्णु शब्द क्या है वो? इदं च विष्णु विक्रीडितं ब्रज रुधि, इदं च विष्णु। यहां पर विष्णु माने क्या लिया है? विष्णु माने क्या है यहां? सब उत्तम, जो एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण होकर के और नित्य करके व्याप्त हो रहे हैं, इसका नाम है। इसी तरह से कोई भी शब्द ले लो, उसकी विरोधी वृत्ति से वहां पर व्यक्त नहीं विचार करके यह व्याकरण में नहीं लिखा है, व्याकरण के द्वारा इसकी साधना नहीं होगी,
अकारण हो जाएगा।
यह होगा किसी हमारे रूप गोस्वामी जैसे काठमंडल जिसके साथ में तंत्री में तंत्री मिली हुई है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि हमारे गुरु पाद पद्मी इत्यादि उनकी तंत्री में तंत्री मिली हुई है, वो सब इन भावनाओं को ग्रहण करते। व्याकरण से सिद्धि नहीं होगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, हमारा जैसा था, बहुत पंडित था, वो जा रहा था, बहुत विद्वान आदमी थे, लंबी छोटी थी, ब्राह्मण थे और सांगोपांग वेद का अध्ययन किया था, विशेषकर अनुसार और विसर्ग में बहुत सी कसरत उन्होंने की थी। तो वो जा रहे थे जंगल में, जंगल के किनारे पहुंचे तो लोगों ने कहा जी मां पंडित जी आप भीतर में मत जाइए। क्यों? तो नहीं जाएंगे हम, तो जरूर जाएंगे, आप मत जाइए, बतलाओ तो किस लिए? अरे भाई वहां पर बाघ रहता है, आपको मार जाएगा, भागवत बाघ मारा कुछ नहीं कर, बाघ ने जिगरा की थी व्याघ्र, कौन सा जिग्रती, तो वो तो जिग्रती मैंने सुनता है, वो अधिक तरह सुनेगा और हमारा क्या कर लेगा? हम व्याकरण के पारदर्शी विद्वान आदमी हैं, इसलिए कोई भी धातु और ईश्वर का विचार करके व्याकरण का विचार करके हम लोग चलते हैं। तुम्हारे जैसे मूर्ख थोड़े भाई हैं। अच्छा पंडित जी आप नहीं मानते हैं, जाइए किनको मैं और उनका तो एक लोग सोटा ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, ये डंडा फंडा मैं कुछ नहीं लेता, देखो तो मूर्ख है, मैं जब आऊंगा तो तुमको बतलाऊंगा। पंडित जी आप आकर के बतलाने वाले नहीं होंगे। तो वो गए, इतने में थोड़े देर में प्रवेश किया, एक लंबा बंगाल टाइगर सामने आया और एकदम गुर्राता उनके पास में आया। उन्होंने कहा जी ये तो सुनेगा क्यों, किंतु जब ऐसे पंजा मारा तो क्या होता है,
खादोती
आप क्वचित खादोती इसका अर्थ भी होता है, तो वो क्वचित नहीं याद आई ये ठीक रहता है, तो हमको पहले विचार करना नहीं आना चाहिए था, और उतने में बाघ हमको मार करके खा लिया। इसलिए विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर को विचारों को समझ मरने के लिए ऐसा विचार किया। आज ही तक भगवान था कलपत्र
महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण कन्नम गौरस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंह दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि। भूवि बृंदारण्य निवासिनं विदिन सद्दामाभिरामोदर राधा कंदनी भक्त्या विहीना पराधन से कृपामयीं शरणं प्रपन्ना वंदे नमस्ते गौरसंगाय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुते तमपि कृतं द्वैपायनो दिवः सचर्या जुहाव प्रीति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा सवैवास्मि सवैवास्मि निजिमान् व्यापिनः इति विज्ञाय राधे तन्मय माम् भजामि राधम् अरविन्दनेत्रान् स्मरामि राधम् मधुरस्मितास्यम् वदामि राधम् करुणाभरगणे
जी। गोस्वामी जी का जीवन के संबंध में हम लोगों ने जो प्रारंभ किया था उसमें प्रक्रिया प्रक्रिया के संबंध में पहले जी गोस्वामी की बात में इस संबंध में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी का अनुशीलन कर इसमें हम लोगों ने 17 पॉइंट तक हम लोगों ने विचार किया। अंत में वो कहते हैं कि कृष्ण के ब्रज संबंधी समस्त लीलाएं हुई ये 17 तक तक है मंत्र में दशाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र में भी प्रौढ़ात्व का ही विचार कृष्ण के विभिन्न ध्यानों और मंत्रों में भी उक्त भाव की झलक होती है जैसे कस्तूरी ललाटले कंकड़े सर्वांगे हरिचंदनम तुलित कंठे च मुक्तावली गोप्य श्री परिवेष्टि वंशी नस्याष्टचंद्रम स्मृतिजित तुलं पीतवस्त्रं वरण्यं कंजाक्षं सर्वदक्षं नौ नहीं हमको गबड़ कंजाक्षं कंबुकंठं शिखरमुखं स्वाधीनस्तदेन श्यामं शांतं तिभंग ललितं ये सब मंत्र है। मंत्र में वही अंशालंबित वामुकं दलधरं मंदं भ्रूलतं किंचित कुंचित कोमलाधरपुटं साची प्रसारेक्षणं आलोलांगुलि पल्लवै मुरलिकाया पूरजंतं मुदा मूले कल्प स्रोत भंग ललितम ध्याये जगन्मोहनम सब जगह वही फूलेंदीवर कांति मदनम बहावतन संप्रियम श्रीवत शांक मुदार कौसुभकरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नंदोत्पलाकित प्रसन्नाभितम गोविंदम कलदेवदन परम दिव्यांगम भूषा गोपी नंदोत्पलाकित रूप संघातम ये सब में वही आता
है।
पूर्ण ध्यान में भी ये भाव की झलक आती है। छात्र ध्यान की परपक्व अवस्था में भी प्रकट लीला के भावों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। ध्यान में असंपट लीला तो नहीं ध्यान किसका होगा जो इस जगत में प्रकट होगा उसको इसलिए लीला अत्यंत अनित्य व माइकी नहीं है। जैसा ध्यान करते हैं वैसे जब लीला हो रही है उसका दर्शन होता है तो वो अनित्य और माइकी कैसे हो इसलिए माइकी नहीं होगी। गीता में भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य बताया जन्म कर्म चौमी विज्ञान एवं जो वही की तत्वता वो संसार को छोड़कर के माया में कभी फंसता नहीं है माया से पार चला जाता है। जो भगवान के जन्म और कर्म को नित्य समझता है तो भगवान का ये जन्म और कर्म दोनों ही नित्य है। कर्म नहीं है लीला इसलिए लीलाएं नित्य
रामानुज आचार्य ने श्लोक की व्याख्या में भगवान के जन्म कर्म और परिक्रमों का भी नित्यत्व स्थापित किया है। जिनके साथ में भगवान लीला करते हैं वो भी मिथ्या था, गोप और गोपी गाय सभी मिथ्य हैं। मसूदन सरस्वती ने दिव्य शब्द का अर्थ अप्राकृत किया है। ये मसूदन सरस्वती का क्यों कहा? इसलिए कि ये अद्वैतवादी होते हुए भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है, इसलिए दिया है। इसलिए दिव्य शब्द का अर्थ है अप्राकृत। अप्राकृत माने कृत। क्या कृत? कृष्ण की जो की हुई जो लीला है वो, तो वहां पर अप्राकृत माने उनकी लीलाएं जितनी है वो सब नित्य चिन्मय सत्य। पिपलादी शाखा साथी या पुरुष बोधनी स्तुति में लीलाओं को नित्य बतलाया गया है। एक वो देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदयाज्ञान्तरात्मा। नित्य लीला अनुरक्तो, नित्य लीला बतलाया गया है वो अनित्य नहीं है। इसलिए माइकी कैसे हो जाएगी? यदि राष्ट्रीय लीला माइक हो गई जो सबसे श्रेष्ठ लीला है तो और बाकी क्या रहा? विठलनाथ ने, विठलनाथ मैंने कौन? वल्लभाचार्य के सुपुत्र द्वितीय पुत्र। विठल मंडल नामक ग्रंथ में भगवान के जन्म और कर्म की नित्यता प्रतिपादित की है। बृहद बामन पुराण में भी प्रकट लीला को नित्य बतलाया गया है। कैसे? मेरे प्रति जात धर्म द्वारा सर्वतू भाव अत्यधिक सुदृढ़ स्नेह प्राप्त होकर के तुम सभी कृतकृत्य हो जाओगे। भगवान श्रुतियों के प्रति कारण वेद की ऋचाओं के प्रति कारण तुमको जब लोभ हुआ है और उसी लोभ से हमको पाने के लिए तुम्हारे अंदर में लालसा हुई है तो मेरे प्रति जात धर्म के द्वारा गोपियों के अनुगमन में सबको मान अत्यधिक सुदृढ़ स्नेह को प्राप्त होकर के तुम सभी कृतकृत्य हो जाओ। भगवान के नाम नित्य हैं और एक एक लीला के द्वारा भगवान के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। लीला भी नित्य होने पर उनका राजबिहारी नाम भी अनित्य हो जाएगा, ये भी नाम अनित्य हो जाएगा। ऐसी दशा में भजन का जो सार है वो तो माइक हो पड़ेगा। ये सब तो भजन के सार हैं, ये सब माइक हो जाएगा। वह भी माइक भगवान नाम को अनित्य समझना नमापराध है। भगवान के नाम को कभी भी अनित्य मत समझो, नहीं तो ये नमापराध हो जाएगा। वो भगवत स्वरूप है। कृष्ण गोविंद इत्यादि राजबिहारी इत्यादि जो नाम है इनको क्या समझो? कृष्ण ही समझो, उसे अलग मत समझो। इसलिए श्रुति में या उपनिषदों में या ब्रह्म सूत्र में वो एक सूत्र है, सूत्र है ये विग्रह ही आप है अरुपवत एवही अरुपवत एवही अरुपवत एव माने क्या? अरुपमत माने होगा न रूपवत, रूप के समान नहीं। क्या आपका जो विग्रह है वही आप है, विग्रह के समान आप नहीं है। न रूपवत, रूप के समान नहीं, आप स्वयं वही विग्रह ही है। देह देही का भेद नहीं है बल्कि नाम स्वयं स्वरूप ही नाम के रूप में प्रकटित है, ऐसा समझ करके भगवान का नाम करने से उसका यथार्थ फल होता है, ऐसे फल नहीं होता। नाम तो स्वयं, किंतु हम लोग नहीं समझते इसलिए नाम अपराध हो जाता है। हरिनाम कर रहे हैं ना, ऐसे ही नचाते हुए माला को कमन अच्छे हैं, भालो अच्छे हैं, आप कैसे हैं, नाम कर रहे हैं। भगवान को नाम का भगवान नाम स्वरूप ज्ञान है। उस समय किसी को प्रणाम नाम करते हैं, किसी को प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं? अरे भगवान तुम्हारे सामने है साक्षात, तुमने उनको करा, दूसरे को प्रणाम करेगा तो फिर कैसा क्या किया है? इसलिए इस नाम को स्वयं भगवान समझ करके नाम करना चाहिए। हम यहां पर बैठे हैं और यहां पर कोई आकर के कोई अत्याधुनिक सवारी भी हो, सवारी मैंने समझते हैं सोने वाला व्यक्ति भी हो, यहां आकर के बैठ करके हमारे सामने सोए तो सोएगा कान बंद देंगे ना उनका, तो इस डर से वो नहीं सोएगा। और भगवान के सामने कोई सो जाएगा, भगवान का नाम कर रहा है, इसका मतलब है उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये स्वयं भगवान। भगवान का नाम कर रहा है उस समय हंसी जिंदगी किसी से करेगा, किसी की निंदा करेगा, भगवान के सामने करना ये शुभ अपराध। इसलिए यदि ये मालूम हो कि साक्षात नाम ही भगवत स्वरूप है, बस ये शुद्ध नाम है। बद्ध जीवों का ऐसा नहीं होता है। बृहद बामन पुराण में भी किसी को कहा गया भगवान के नाम नित्य है, लीला नहीं नित्य होने से उनके रास तिहारी इत्यादि नाम भी अनित्य हो जाएंगे। जी गोस्वामी ने स्वयं ही भगवत संदर्भ में भगवान के नाम जन्म कर्म इत्यादि के नित्यत्व का प्रतिपादन किया है। जी गोस्वामी ने स्वयं ही ऐसा किया, यही नहीं उन्होंने भगवान के रूप प्रकाश जन्म कर्म विशिष्ट लीला और परिकर सबको तथा अनंत तदीय स्वरूप शक्ति की अभिव्यक्ति से किया। उनकी स्वरूप शक्ति से यह है क्या उनकी लीलाएं, उनके परिकर, उनका धाम, सब कुछ क्या है उनकी नित्य स्वरूप शक्ति का अभिव्यक्ति प्रकाश है। इसलिए उनकी स्वरूप शक्ति की जब ये अभिव्यक्ति है ये गोपियां, तो ये अनित्य कैसे हों? उनकी लीला में जो भाव है वो कैसे वो अनित्य हो जाएगा, माइकी हो जाएगी? यहां पर स्वरूप शक्ति है, वहां पर माया कैसे प्रभाव कर सकती? माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए जी गोस्वामी की युक्ति के अनुसार कभी नित्य है तब करुणा और प्रति उपपति इत्यादि भाव जो ब्रज में है ये कैसे माइक हो जाएगी? ये माइक नहीं हो सकती। ब्रज सुंदरियां अपनी को साक्षी रखकर कृष्ण के साथ विवाह में बंधी हुई है ऐसा किसी शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। वेद से लेकर के पुराण और श्रीमद् भागवत इत्यादि में कहीं भी नहीं लिखा गया कि विप्र और अग्नि को साक्षी देकर के दोनों विवाह बंधन में कोई वैदिक क्रिया के साथ में हुई है, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। यदि ऐसा कोई कहते हैं तो क्या यह विचार सुखदेव गोस्वामी के सम्मत होगा? सुखदेव गोस्वामी उसको नहीं मानेंगे। महाराज कल्पित के द्वारा धर्म संस्थापक आप काम कृष्ण उपपति भाव के प्रति संदिग्ध होकर के प्रश्न करने पर ही सुखदेव गोस्वामी ये स्पष्ट रूप से कह सकते थे जो वो गोपियां की विवाहित पत्नियां हैं। जब परीक्षित महाराज ने पूछा तो वो स्पष्ट कर देते, अरे उनकी तो अपनी पत्नियां हैं, वो चाहे जो करें, उनको नंगी रखें या उनसे नाचाएं या जो करें, उसमें तुम कहने वाले कौन हो? उनकी तो अपनी पत्नियां हैं। उन्होंने नहीं कहा ये परदारा नहीं है, ये कह देते। उन्होंने कष्टप्राय सिद्धांत के द्वारा परीक्षित महाराज जी को समझाने का क्यों प्रयास किया? तेजी लोगों को इसके लिए दोष नहीं, न तेज ज्ञान सब न दोष तेज ज्ञान पूर्वक को ईश्वरों को भी इसके लिए दोष नहीं है। तो कृष्ण तो सर्वेश्वर ईश्वर है, कैसे उनको दोष होगा? और एक बात बहुत विचारणीय है, हिंदू शास्त्र में हमारे सनातन रीति में वैदिक क्रिया में उपनयन से पहले किसी का विवाह नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कहीं भी बिना उपनयन के विवाह नहीं होता। पहले विवाह हो जाएगा तो उपनयन होगा, ऐसा नहीं होता। पहले उपनयन हो जाएगा तब कृष्ण का ब्रज में उपनयन ही तो नहीं हुआ, तो विवाह कैसे हो जाएगा? कब हो गया? संकल्प कर लिया कि यह गर्भ में हो गया, विवाह नहीं हुआ। यह आदि शास्त्रों के विरुद्ध है। कहीं कहीं पति शब्द का उल्लेख देखा जाता है, कहीं कहीं देखा जाता है वो पति शब्द का अर्थ विवाहित पति से न होकर के गति से समझो। जैसे कृष्ण जीव मात्र के पति हैं, माने क्या विवाहित पति हैं, पालन करने वाला वो पति के रूप में, केवल विवाहित पति ही नायक के प्रति पति कहे जाते हैं ऐसी बात नहीं। नायिका प्रकरण में प्रक्रिया के लिए स्वाधीन भर्तृका शब्द का प्रयोग देखा जाता है, स्वाधीन भर्तृका जो अपने पति को वशीभूत करती है उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी नायिका के पति के रूप में परवर्णित हुए हो, ऐसा हो सकता है, किंतु दूसरी दूसरी नायिकाओं से सहित उनका दाम्पत्य संबंध नहीं है। रुक्मिणी के पति हैं, शतभाना के पति हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो कात्यायनी व्रत ने जिनको वर दिया था उनको भी किसी आधार पर कह सकते हैं, है नहीं तभी कह सकते हैं स्वकीया के भाव, किंतु विवाह उनके साथ भी उनका नहीं हुआ है, कहीं भी उल्लेख नहीं, मन ही मन में वो ऐसा सोचती थी। श्रीमद् भागवत में परधारा विमर्शन का प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता है, यदि ऐसी बात होती। अपने पतियों के संबंधों का भी उल्लेख है, जो उनके पतियों के लिए रसोई बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। न जात बद देवी नाम पत्नी सा संग माना, ये लिखा अपने पतियों का संग कभी नहीं उन्होंने किया, ये तो लिखा अपने पतियों का, इसको कहां से कोई उड़ा देगा। इसी को कहते हैं पीछे का और पहले का, पूर्व और पर का संगति, ये पूर्व की संगति नहीं है। श्री जी गोस्वामी क्या यह विचार अपना नहीं होकर के दूसरों के किया। गोपाल तापने में सौ वो ही स्वामी भक्त जी गोस्वामी ने कहा है, तो उसके लिए ये करें, स्वामी शब्द का विवाह वाचक शब्द नहीं है, है? जितने सन्यासी लोग हैं उनको स्वामी कहते हैं, तो किसी के पति हैं, पति गृहस्थों में भी बहुत से लोगों का स्वामी उपाधि होती है, स्वामी ऐश्वर्य बोधक है। पाणी में कहते हैं स्वामी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के रूप में स्वामी शब्द का प्रयोग होता है। लोके ही जस्य ही जस स्वामी भवती सतस्य भोक्ता भवती, इसलिए स्वामी कहने से विवाहित पति का ही बोध नहीं होता। जगत के लोक के स्वामी कृष्ण है, एक ही कहने केवल सत्यभामा के स्वामी नहीं है, जिस ब्रह्मांड के जितने जीव चार अचराचर सबके वो स्वामी है। ब्रज के समस्त संबंधी चिन्हय है, जहां माया शब्द का उल्लेख है वहां जो माया से समझो, जहां भी माया शब्द का प्रयोग ब्रज में किया गया है वो किस लिए है, योग माया से समझो। असल में समस्त योग माया के लिए कहा गया है, किंतु इस जगत का व्यक्ति माया के अतिरिक्त, इस महामाया के अतिरिक्त उसकी धारणा नहीं है, इसलिए जहां भी शब्द का माया का प्रयोग हुआ उसको समझ लेता है महामाया, किंतु है ऐसा नहीं, विशेष करके ब्रज की लीलाओं में ऐसा नहीं, या वैकुंठगत लीलाओं में भी नहीं है। इसलिए अभिमन्यु के साथ में श्रीमती राधिका का जो पति भाव वर्णित हुआ है उसमें चिन्मय व्यवहार ही समझो, चिन्मय किसके द्वारा हुआ, तो जो माया के द्वारा किया हुआ रचित जो भाव है वो कैसे जड़ होगा हो जाएगा, भगवान की लीला श्रृंखलाओं के मध्य में होने के कारण वह संबंध भी माइकी नहीं है, जो माया ही उस संबंध में हेतु है। श्रीमती राधिका कृष्ण की स्वरूप भूता राजनी शक्ति है, स्वरूप भूता राजनी शक्ति, इसमें कोई संबंध नहीं। लीला विशिष्ट राधा कृष्ण जुगलिंग हमारे भजनीय है, यह बात स्थिर सिद्ध है सिद्धांत की, लीला विशिष्ट राधा कृष्ण जुगलिंग हमारे भजनीय है, लीला विहीन राधा कृष्ण हमारी धारणा और भजन के अतीत है। राधा कृष्ण जहां रहेंगे कैसे रहेंगे, लीला विष्ण लीला विहीन राधा कृष्ण स्टैच्यू के भांति में स्थिर रहेंगे ऐसा नहीं, न्याय शंका हो सकती है, जैसे गोपियों का दुर्जस मनोवेदना शास्त्र नंद इत्यादि के द्वारा निषेध वाक्य और यातनाएं देखी जाती है, सत्यभामा रुक्मिणी और राजमहस्य को संबंध में ऐसा नहीं देखा, जैसे जटिला टुकला का नाम सुना जाता है और वो राधा कृष्ण की निंदा करती हैं और उनके सास ससुर उनके लिए यातना देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं कहा जाता है। आपातः ऐसा विचार उठ सकता है कि रुक्मिणी और सत्यभामा श्रेष्ठ है, उनको कोई मना करने वाला और कोई निंदनीय कहने वाला नहीं है, क्योंकि विवाह हुआ था इसलिए सत्यभामा और रुक्मिणी राधिका और गोपियों से श्रेष्ठ हो गई, तो किंतु राधा ने मार भावती गोपियों जैसे लौकिक दुख देखे जाते हैं उसी प्रकार दूसरों की अपेक्षा उनका कदित सुख भी देखा जाता है। जैसे दुख देखा जाता वैसे उनका सुख भी कैसा, जो सत्यभामा और रुक्मणी को किसी समय में उपलब्ध नहीं, उनके लिए संभव पर नहीं, सीता जी के लिए वो संभव पर नहीं। देवियों का कृष्ण के सहित संबंध जो है अत्यंत अनुराग का फल है, अनुराग की अंतिम स्थिति का फल है। इस संबंध को स्थापन करने में उन्हें सजनों को त्याग करना पड़ा, आद्यपद से भी उनको विचलित होना पड़ा। यह सब क्लेश और दुख उनके लिए परम सुखद प्रतीत होता है। श्रीमती राधिका जी कृष्ण का दर्शन कर रही है गोवर्धन पर्वत के ऊपर में चढ़कर, दो पहाड़ी है, पत्थर जल रहे हैं, नुकीले पत्थर हैं, उस पर खड़ी है राधिका जी, पैर में चुभ रहा है किंतु उनको मालूम नहीं हो रहा है, और गर्मी से एकदम झुलस रही हैं, पैर भी जल रहे हैं, उनको प्रतीत ही नहीं होता, उनको उसी में ही सुख प्रतीत होती है। एक आदमी रेस में दौड़ा, उसके साथ में चुने हुए 50 व्यक्ति और दौड़ रहे हैं, विभिन्न भारतवर्ष के या वर्ल्ड से आए हुए हैं, और बेचारा वो 5 माइल की रेस दौड़ रहा है, दौड़ते पड़ते पसीने से लथपथ हो गए और अंत में वो गिर करके जब आया तो सबसे फर्स्ट हुआ वो, और इसके बाद में वो हाथ करके एकदम बेचैन हो, तो बेचैनी उसको महसूस और कष्ट होता है, उसको क्या मालूम होता है, आज हमारा जीवन सार्थक आनंद के अंतिम ऊपर में रहता है, एकदम आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है, कभी आज परिश्रम हमारा सफल हो गया। साधारण जगत में भी लौकिक ही चीज में अनित्य चीजों में ही इतना आनंद है, तो उसमें जितना भी कष्ट झेल करके कृष्ण को प्राप्त करना और उनका स्नेह पाना, ये कितने बड़े आनंद की बात है, उसमें सब आनंद सब दुख भी आनंद हो जाता है, इसी का नाम महाभाव है। ऐसे दिव्य अनुराग का चरम उत्कर्ष का दूसरा दृष्टांत गोपियों का तृप्त नहीं है, इसीलिए बतलाया गया आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तान वृंदावन रम्या कार्तिक उपासना बधु बधु वर्गे ने जा कल्पिता, बधु वर्गे ने जा कल्पिता, यही एकमात्र गोपियों का ही दृष्टांत है, और दूसरा इसके साथ में कोई तुलना का फल नहीं है। महाभारती गोपियों का यह असाधारण अलौकिक अनुराग पूज्य बात श्री रज्जू गोस्वामी के लिए भी जो एकांत में प्रेत होगा, इसमें काहे की क्या बात है, जगह जगह उन्होंने दिखलाया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसलिए परम कृपालु जी गोस्वामी ने पूर्व लिखित स्वेच्छा लिखितम किंचित श्लोक किया, इसीलिए उन्होंने कहा किंचित लिखन स्वेच्छिका, स्वयं इच्छा से लिखा और कोई दूसरे के लिए लिखा, कोई ऐकानी भजन कर रहा है, अष्टकाली लीला इत्यादि का चिंतन कर रहे हैं, साधारण एक आदमी के लिए कहेंगे तुम भी अष्टकाली लीला चिंतन करो, न कहने पहले तुम्हारी श्रद्धा है, वैष्णव की सेवा करो, नाम कीर्तन करो और नर्थ को छोड़ो, यही तो कहेंगे ना, न कह देंगे तुम वहां पर पहुंच जाओ और वही काम करो, ये नहीं। इसलिए उपपत्य के संबंध में श्रीदेव गोस्वामी के लिए भी अभिष्ट है, यदि गुरु अग्नि विप्र को साक्षी रख करके ब्रज बलराम के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ होता तो उज्जवल ग्रंथि में आद्योपांत ये सब बातें विचार करके लिखी जाती, किंतु इसलिए नहीं है, गुरु गोस्वामी द्वारा लिखित दाम्पत्य परीक्षा दूसरे की इच्छा से हुआ है। ऋग्वेद में बहुत से मंत्रों में जात शब्द का उल्लेख है, अविवाहिता कन्या के प्रेमी को भी उक्त ऋग्वेद में उल्लेख देखा जाता है। आदि छांदोग उपनिषंकर भाष आनंद गिरी टीका में भी वामदेव शोभ उपासना के अंग रूप में प्रति अभाव का अनुमोदन दृष्टिगोचर होता है। पाणी में भी ऐसा जागरण की थी जागरण, गरीब वैष्णव के साध और साधन के संबंध में प्रधान वैशिष्ट है प्रति अभाव, इसके पूर्व किसी भी वैष्णव आचार्य ने इसका उपदेश नहीं किया, किसी भी रामानुज ने, मध्व ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बादित्य ने, किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। प्रति अभाव का इंगित कृष्ण कर्णामृत के संख्यक श्लोक में भागवत के राजपंच अध्याय में इनकी टीकाओं में चंडीदास विद्यापति के पदावलियों में ही पाया जाता है। जयदेव के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं है किंतु इंगित है, इंगित है केवल मात्र स्पष्ट नहीं है। यद्यपि गीत गोविंद में तत्तुर्मा कीलितम पति का उल्लेख है तथापि देही पद पल्लव उदाहरण अंग प्रथम सर्ग में बासंती राज के प्रसंग में दूर से श्रीमती काराधिका का दर्शन दुर्जयमान समुत्कंठितम गोपवधू कथितम विकनोति सलीलम इत्यादि वचनों के द्वारा श्रीमती राधिका कृष्ण की विवाहित पत्नी है ऐसा नहीं लगता। गौरी वैष्णव ने किसी भी वैष्णवाचार्य ने परकिया भाव से भजन का निर्देश दिया, गौरी वैष्णव के अतिरिक्त और किसी ने नहीं लिखा। बहुत से लोगों ने स्वामी के संबंध में ऐसी धारणाएं भी सबकी आगे पक्ष पाती है किंतु यह आशंका सर्वथा निर्मूल है, एकदम निर्मूल है। रूप श्री सनातन रघुनाथ दास कविकरण प्रभुत ने परकिया भाव से ही राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, परंतु जी गोस्वामी का विचार यह था कि परकिया रसास्वादन अथवा परकिया भाव से भजन का अधिकारी बिरले हैं, इसलिए ये सभी का विचार ऐसा रूप गोस्वामी का ही और सनातन गोस्वामी सबका, जी गोस्वामी का ही केवल नहीं, इसलिए मंत्र में ही उपासना की बात कृष्ण संदर्भ में उल्लेख किया है। इसलिए साधारण जो साधक है वो मंत्र में ही उपासना करेंगे, वो सरस्वती से होगी नहीं तो वो करेंगे क्या, वो ही नहीं। जैसे हम दामोदर लीला का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण चंद्र जी बाल गोपाल हैं, ऐसे घुट रूपों पर चल रहे हैं, मोर पंख लगा है, फिर सब स्वतंत्र नेत्रों से देख रहे हैं, पीछे में रस्सी से उखल बंधी हुई है, कृष्ण जात देख रहे हैं ध्यान में, जो यहां पर आंसू सूख रहे हैं काली निश्चित होकर तो यहां तक ये सप्ताह है। बच्चे कुछ खड़े हैं कृष्ण को ताली बजा करके जा रहे, ये ध्यान है। मन क्या है चौथा श्लोक में परम देव मोक्षम न मोक्षावलिमान बकुरनाथ गोपाल बाल सदा ने मन क्या विराजता। मैं आप दूसरा बात नहीं चाहता, यही ध्यान हमको बना रहे, इसको कहते हैं मंत्रमयी उपासना। एक ध्यान और कृष्ण को ऐसे देख रहे हैं वो चल नहीं रहे और कोई चीज नहीं, जैसा देख रहे हैं वैसा एक रूप में उनका ध्यान करना, ये मंत्रमोल उपास। खुले दिवर कांत में ये भी क्या है, एक जगह उसको देखना। अब बाल्य लीला से छोड़कर दैनंदिन का जितना उनका भाव है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, यशोदा मैया से जा रहे हैं, कृष्ण जल्दी मचा रहे हैं, अरे सखा गए मैया छेड़ दे, और मैया बार बार उसको भलैया ले रही है उसको सिंगार, और ये क्या कर रहे हैं, अरे मैया जल्दी से छोड़, वो सब सखा सब आगे गए, भैया रंबा रही हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, मुझको जल्दी छोड़, वो मचा रहे हैं और उनका हाथ पकड़ करके और उनको छोड़। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण चल पड़े, सब सखा बड़े उल्लसित हो रहे हैं,